Dear friends, this is our final session for the conference.
प्यारे मित्रों, इस कॉन्फ्रेंस के लिए ये हमारा आखिरी सेशन है.
So let's honor the Lord Jesus by bringing all of our energy, all of our attention to God's word.
तो आइए हम सारी चीजें छोड़ करके इधर-उधर की बातें और ध्यान अपना प्रभु के वचन की ओर लगाएं.
And again, we want to look at John chapter 1.
और फिर से हम दोबारा से यूहन्ना एक अध्याय को देखेंगे.
And we're going to focus especially on John the Baptist's message about Jesus.
और हम आज की सुबह में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जो संदेश है उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे.
The message is broken up into two places.
और जो ये संदेश है वो दो भागों में बांटा गया है.
Verse 15 and then verses 19 through 34.
और 15 से लेकर के 15 through.
Verse 15 is one portion.
15 एक हिस्सा है और उसके बाद
19 through 34 is another portion.
19 से 34 तक फिर दूसरा भाग है.
We saw earlier in verses 6 and 7 that he testified about the light.
6 और 7 पद में हमने देखा कि वो ज्योति की गवाही बन करके आता है.
Okay. But in verse 15, let's read this one verse after we ask for God's blessing.
लेकिन
let's ask for God's blessing.
Okay, प्रार्थना करेंगे पहले.
Lord, open our eyes.
प्रभु जी हमारी आंखें खोल दीजिए.
That we may behold wonderful things from your word.
ताकि प्रभु जी हम आपके वचन में से अद्भुत बातें सीख सकें.
Build your church in North India.
प्रभु जी उत्तर भारत में अपनी मंडली को अपनी कलीसिया को आप बनाइए.
Encourage the believers.
और प्रभु विश्वासियों को उत्साहित कीजिए.
And glorify your great name.
और प्रभु अपने महान नाम को महिमा दीजिए.
In Jesus name.
प्रभु यीशु के पवित्र नाम में.
Amen. Let's begin by reading verse 15.
आइए हम 15 पद पढ़ते हैं. यूहन्ना एक अध्याय 15 पद. यूहन्ना ने उसके विषय में साक्षी दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा, वह जो मेरे बाद आने वाला है मुझसे आगे है क्योंकि वह मुझसे पहले था.
So this is John the Baptist's message about the Lord Jesus.
तो ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का संदेश है हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में.
He said that Jesus, though he comes after me, has a higher rank, higher position.
और वो कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कि हालांकि वो मेरे बाद में पैदा हो रहे हैं, मेरे पीछे आते हैं, लेकिन वो मुझसे ऊंचे हैं.
And notice the end of the verse.
और इस पद के अंतिम भाग को देखिए आप.
He says that Jesus existed before me.
और वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व मुझसे पहला है.
Now, if that doesn't sound strange to you,
और क्या ये आपको अद्भुत बात नहीं लगती, अजीब बात नहीं लगती?
You might not know about John the Baptist and Jesus.
और आपको शायद पता होगा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में और प्रभु यीशु के बारे में.
The Bible tells us several things about their relationship.
और पवित्र बाइबल हमें उनके दोनों के संबंधों के बारे में काफी बातें बताती है.
The first thing is that they're relatives.
और पहली बात यह है कि वो एक दूसरे के संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं.
They were cousins.
वो चचेरे भाई थे.
Mary, the mother of Jesus, and Elizabeth, the mother of John, were sisters.
और जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माँ थी और यीशु प्रभु की माँ थी वो दोनों बहनें थी.
But here John says Jesus existed before me.
लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे पहले हैं.
Do you know which one of them was older?
क्या आपको मालूम है कि उन दोनों में से कौन बड़ा था?
Yeah, John the Baptist. Do you remember how much older?
क्या आप ये भी आपको ये भी मालूम है कि वो कितना बड़ा था?
6 months.
6 महीने बड़ा था.
So John is 6 months older than Jesus.
तो 6 महीने बड़े हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले प्रभु यीशु मसीह से.
We find that detail in Luke chapter 1.
और लूका के एक अध्याय में वो सारे वर्णन दिए गए हैं.
So if John is older, how can he say that Jesus existed before me?
तो अगर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले उम्र में बड़े हैं तो वो कैसे कह सकते हैं कि यीशु मसीह का अस्तित्व मेरे से पहले है?
Of course, he's looking at the eternal, everlasting nature of Christ.
दरअसल यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह के जो अनंत काल का जो अस्तित्व है उसको देख करके इस बात को कहते हैं.
Turn with me to the Old Testament prophet Micah.
आइए आप मेरे साथ में मीका नबी की पुस्तक निकालें पुराने नियम में.
Micah chapter 5.
और मीका का 5 अध्याय आप देख लीजिए.
Jonah, Micah, Nahum. Micah chapter 5. Let's let everybody find it because this is one of those places we don't often turn.
Jonah, Micah, Nahum. तो उसके बीच में पुराने नियम में.
Yeah, we'll verse? Wait patiently. I don't want to say the verse because somebody will read it.
Micah एक ही
है. She wants the verse. Yeah. Okay, we will let her read the verse after everyone has found it.
So, जब उपासना पड़ेगी जब सब कुछ
Daniel,
को मिल जाए.
Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah.
दो पद. दो.
Micah. Two? Micah. Micah. Chapter 5. We're going to wait just another minute for our sister.
जल्दी ढूंढ लो भाई, हम लोग आपके इंतजार कर रहे हैं.
Help Priscilla find Micah. What book are you in?
Sister Priscilla.
Well, tell her which way to go. Micah, chapter 5.
Yeah. जी. Okay. Robinson भाई.
Can we find it? Yeah, chapter 5. Okay. In this chapter, God the Father gives a prophecy about Jesus.
इस अध्याय में परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करते हैं.
And we want our little friend to read verse 2.
Our little friend, Upasana, please read verse 2.
The Lord says that Bethlehem of
Ephrathah. One more line.
So the Lord will abandon his people to their
ancient times. Does it say something after that?
Yeah.
Did she miss a line?
No.
She did not miss a line?
Yeah.
Okay.
See, right.
Yeah. Yeah. Okay. In the English it says, his goings forth are from long ago, from the days of eternity.
Yes, yes.
Okay.
Uska nikalna prachin kal se hai, varan anadi kal se hai. Wo pehle se aa raha hai.
Yeah. So, the Father says about Jesus that he, though born in Bethlehem, existed from all eternity.
तो पिता यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं कि उसका जो आना आमद है या आगमन है वो प्राचीन काल से है.
This is what John the Baptist is seeing in Christ.
और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मसीह में इसी बात को पाता है या देखता है.
Even though I am older than him, he existed from eternity.
और हालांकि मैं उम्र में उससे बड़ा हूं लेकिन वो मुझसे पहले है इस दुनिया में.
Now, everything we learn about Christ should move us to worship him.
और जितनी चीजें भी हमने सीखी हैं मसीह के बारे में वो सारी हमें उसकी आराधना करने के लिए प्रेरित करना चाहिए.
Have you praised Jesus simply for who he is, not what he's done?
क्या आपने सुनिए इधर में, क्या आपने कभी प्रभु की आराधना की है या उसकी प्रशंसा की है कि वो कौन है, इसलिए नहीं कि उसने आपके लिए क्या किया है.
Like the devotion this morning from Psalm 150, for his mighty deeds and for his excellent greatness.
और जैसे कि हमने आज की सुबह में भजन संहिता 150 में से देखा था कि उसके महान कार्यों के लिए और वो उसका जो महानता है उसके लिए उसकी प्रशंसा की जाए.
So when you learn something true about Christ, your heart should be moved to praise him.
तो जब आप मसीह के बारे में कोई सत्य सीखते हैं और वो आपको छूता है तो आपको और भी प्रभु की आराधना करने के लिए मन उकसाना चाहिए.
This also relates to his eternality, to his everlastingness.
और यही चीज जो है ये जो यहाँ पर लिखी गई है मीका में, तो ये उसका जो अनंत काल का जो स्वभाव है यीशु मसीह का, कि वो एक दिन से दो कुछ सालों से नहीं, परंतु अनंत काल से अस्तित्व में होकर के है.
Let's learn how to praise him for being eternal.
आइए हम उसकी स्तुति करें और उसका उसके जीवन उसके बारे में सीखें कि वो अनंत काल से कैसे है.
Revelation chapter 4.
प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 को देखेंगे.
Revelation chapter 4.
अंतिम पुस्तक बाइबल की 4 अध्याय.
Sometimes Revelation intimidates us because of the unusual creatures, images.
और कई बार जो है प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है उसमें कई किस्म के प्राणी दिए हुए हैं, तो ये कुछ अद्भुत पुस्तक जैसी दिखाई देती है.
But it's not designed to intimidate us, it's designed to bless us, to help us.
और ये जो पुस्तक है ये हमें डराने के लिए नहीं लिखी गई है, बल्कि हमें आशीष देने के लिए लिखी गई है.
Some of the strange images are in the verse I want us to read.
और कुछ जो अद्भुत चीजें या अद्भुत प्राणी के बारे में कुछ वर्णन है यहाँ पर, तो हम उनमें से कुछ पढ़ना चाहेंगे.
In fact, what we will read is the same vision that Isaiah saw in Isaiah 6.
और दरअसल हम कुछ ऐसे पद पढ़ना चाहते हैं जैसे कि यशायाह नबी ने 6 अध्याय में परमेश्वर के बारे में दर्शन देखा था.
When Isaiah saw the glory of Christ,
जब यशायाह ने परमेश्वर की महिमा को देखा,
the book of Revelation shows us also the glory of the enthroned Christ.
और जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है वो भी हमें वो परमेश्वर के मसीह के ऐसा वर्णन करती है जैसे वो सिंहासन पर बैठा हुआ हो.
Let's read verses 7 and 8.
आइए 7 और 8 पद को हम पढ़ लेंगे.
पहला प्राणी सिंह के सदृश, दूसरा प्राणी बछड़े के सदृश, और तीसरे प्राणी का मुख मनुष्य के समान, और चौथा प्राणी उड़ते उकाब का सदृश था. इन चार प्राणियों में से प्रत्येक 6-6 टुकड़े उनके चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें थी. वे दिन रात दिन कहते रहते थकते नहीं थे, पवित्र 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 प्रभु
Amen. I think these living creatures represent Christ Himself. They're not Jesus, but I think they represent Him.
और ये जो यहाँ पर जीवित प्राणी हैं, वो ऐसा लगता है कि वो मसीह को मसीह का प्रतीक हैं.
I get that from the imagery, but let's focus on what they're saying.
और हम जो हैं यहाँ पर उनको नहीं बल्कि वो कह क्या रहे हैं इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे.
They're praising him for being holy, holy, holy.
वो उस परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पवित्र पवित्र पवित्र.
They're acknowledging him as the Lord God, as Yahweh.
और वो उसको प्रभु करके मान रहे हैं और उसकी उसका बखान कर रहे हैं.
They
वो प्रभु सर्वशक्तिमान है.
Declaring that he is almighty, all powerful.
और वो इस बात को दर्शा रहे हैं कि वो बहुत ही ताकतवर और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है.
But notice that they're also praising Christ for being eternal.
लेकिन इस पवित्र 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 के साथ ही साथ वो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर कि वो अनंत काल से है.
Who was and is to come.
जो था जो है और जो आने वाला है.
The reason they praise him forever is because he lives forever.
और वो इसलिए उस परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं क्योंकि वो सदा काल के लिए जीवित रहता है.
The time will never come in heaven where you have filled up all the praise Jesus deserves.
और स्वर्ग में कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा कि आपने जैसे हद पार कर दी हो स्तुति और प्रशंसा देने की. ऐसा समय कभी नहीं आएगा, आप सर्वदा उस स्तुति प्रशंसा में लगे रहेंगे.
We will praise him forever because he is eternal.
और हम उसकी प्रशंसा करेंगे या उसकी आदर करेंगे क्योंकि वो हमेशा के लिए अनंत काल का परमेश्वर है.
The rest of the passage shows us something like holy jealousy.
और जो इसका बाकी का जो हिस्सा है वो ऐसा लगता है जैसे पवित्र ईर्ष्या की बात की गई हो यहाँ पर.
When the angels praise him,
जब स्वर्गदूत उसकी स्तुति करते हैं,
the 24 elders throw their crowns at his feet.
तो जो 24 प्राचीन हैं वो अपने सिंहासन अपने मुकुट को नीचे रख देते हैं उसके पैरों में.
And they praise him.
और वो भी उसकी स्तुति करते हैं.
But the angels get jealous and they say, no, 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 no. We must praise him.
लेकिन जो स्वर्गदूत हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे हम आप नहीं हमारा नंबर है हम लोग करेंगे उसकी
स्तुति. And when the angels finish, the 24 elders say, no, 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 it's our turn.
And they praise him. और जैसे स्वर्गदूत फिर समाप्त करते हैं तो तुरंत ही उधर प्राचीन बोलते हैं नहीं अब हमारा नंबर है प्रभु की स्तुति करने का.
Are you moved to praise Christ because you see his eternal nature?
और ध्यान से सुनिए मेरी तरफ. जब आपको पता चलता है कि हमारा परमेश्वर सनातन काल का परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं तो क्या आपका हृदय आपका दिमाग आपको उत्साहित नहीं करता कि आप उस प्रभु को आराधना करें जो सनातन काल का है.
John the Baptist saw this truth in Jesus.
और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यही चरित्रण प्रभु यीशु मसीह का देखा.
Turn to Hebrews chapter 7.
और इब्रानियों के 7 अध्याय को देख लीजिए.
Hebrews chapter 7.
Ibraniyo 7. Hebrews 7.
Verses 23 through 25.
वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए. इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी पर यह युगानुयुग रहता है इस कारण उसका याजक पद अटल है. इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है.
23-24-25
क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है.
Verse 25 tells us why he can save us forever.
और 25 पद ये बताता है कि वो हमें क्यों बचा सकता है हमारा उद्धार क्यों कर सकता है.
He is able to save us forever because he lives forever.
और जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है वो हमारा उद्धार इसलिए करने में सामर्थ्य है या योग्य है क्योंकि वो कितने साल का परमेश्वर है सनातन काल का सदा के लिए जीवित है.
So if you don't praise him for his everlastingness, it means you don't understand salvation.
तो अगर आप उस परमेश्वर को उसके अनंतकालीन चरित्र को अगर आप उसके महिमा का बखान नहीं करते या उसकी आराधना नहीं करते ये सत्य जानने के बाद में इसका मतलब ये है कि आपने उद्धार के जो पहलू होता है उसको पूर्ण रूप से समझा नहीं है.
A lot of people want to know about salvation. The Hindus want to know what saves. The Buddhists want to know what saves.
बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो उद्धार के बारे में जानना चाहते हैं. हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, और भी लोग हैं जो उद्धार की बातें जानना चाहते हैं.
A lot of people who call themselves Christians want to know about salvation.
और बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, मसीह कहते हैं, क्योंकि वो उद्धार के बारे में जानते हैं.
But the true Christian wants to know the Savior who saves us.
Amen. और लेकिन जो सच्चा मसीह है वो केवल उद्धार के ही नहीं बल्कि वो जो उद्धार करता है उसको जानना चाहता है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट दिखाना चाहेगा.
This is what John the Baptist saw in Jesus.
और यही चीज है यही सत्य है जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु के अंदर में देखा.
He is the everlasting God who saves his people forever.
और ये वो अनंत काल का परमेश्वर है जो अपने लोगों का उद्धार करता है उन्हें बचाता है सदा के लिए.
Look at Hebrews chapter 13.
आइए इब्रानियों के 13 अध्याय को देख लें हम लोग.
Verse 8.
और उसका 13 का 8 पद. 13:8.
यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है.
Jesus Christ is same yesterday, today and forever.
Amen. I encourage you to memorize this verse.
मैं चाहता हूँ उत्साहित करना चाहूँगा आपको कि आप इस पद को.
It's short enough that you should know it right now.
इस पद को आप कंठस्थ कर लें.
But also know where it's found.
तो सच्चाई तो अच्छी बात है लेकिन ये भी याद रखें कि इसका रेफरेंस क्या है कहाँ पाया जाता है और इसमें 13:8 में यस.
The reason I encourage you to memorize it is because your salvation depends on it.
और मैं इसलिए आपको उत्साहित करना चाहता हूँ इसको याद करने के लिए क्योंकि हमने अभी कुछ समय पहले पढ़ा था हमारा उद्धार किस लिए होता है क्योंकि यीशु मसीह सदाकाल का परमेश्वर है तो ये कितनी बड़ी महान सच्चाई है.
Even as you are seated in your seats right now. और
जब आप अपने सीट पर बैठे हुए हैं इस समय.
When you slept in your bed last night.
और जब आप अपने बिस्तर में कल रात सोए.
When you traveled to your home later today.
और जब आप अपने घर पर यात्रा करते हैं आज.
The angels in heaven are continually praising Jesus for being you were, you are to come.
और स्वर्ग में जो स्वर्गदूत हैं जब आप इन सारी चीजों में व्यस्त हैं यात्रा वगैरह में सोने में बैठने में तो जो पवित्र स्वर्गदूत हैं वो उसकी स्तुति प्रशंसा करने में लगे हुए हैं कि आप थे आप हैं और आप रहेंगे.
Not only does John the Baptist see Jesus as everlasting,
और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले केवल यीशु मसीह को सनातन काल का प्रभु ही नहीं देखते बल्कि
He also sees Jesus as worthy of everyone's worship.
और उतना ही नहीं बल्कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह सब लोगों की आराधना के योग्य परमेश्वर है.
Let's go to John chapter 1.
और यूहन्ना के एक अध्याय को देख लीजिए आप.
Verse 27.
और 1:27 यूहन्ना 1:27.
अर्थात मेरे बाद आने वाला है
जी
जिसकी जूती का बंद मैं खोलने के योग्य नहीं
जी.
Why did John feel unworthy to touch the sandal of Christ?
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने आप को अयोग्य क्यों समझा कि वो उसकी जूती का बंद नहीं खोल सकता?
Why did he feel unworthy?
क्या ये जो अयोग्यता की जो बात है ये क्यों आई कोई बता सकता है? Because he knew that Jesus Christ is eternal God.
Yeah.
और कुछ? Holy.
Yeah. Not only did he know Jesus is eternal, but when he felt his unworthiness, he must have known that Jesus is also holy, pure.
और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो अपनी अयोग्यता यहाँ पर दिखा रहा है उससे पता चलता है दूसरे कॉन्ट्रास्ट में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है बहुत महान है बड़ा परमेश्वर है इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसके सामने अपने आप को अयोग्य समझता है.
Remember again when Isaiah saw the glory of the Lord.
और आपको फिर से वो चित्रण याद दिलाना चाहेंगे जिसमें यशया ने परमेश्वर पिता का वो दर्शन देखा था जिसमें वो एक बड़े उस पर बैठे हुए थे सिंहासन पर.
Many things are true about God and the Bible reveals them to us.
बहुत सारी सच्चाइयां हैं जो बाइबल में पाई जाती हैं और हम उन्हें देखते हैं.
But there is nothing in the Bible repeated 3 times about God except holy, holy, holy.
और बहुत सारी सच्चाइयां हम देखते हैं बाइबल में परमेश्वर के बारे में लेकिन यही एक चीज है जो जो दोहराई गई है 3 बार पवित्र 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 और कोई चीज इस तरीके से नहीं दोहराई गई परमेश्वर के बारे में.
And you remember when Isaiah saw the holiness of God in Christ, he saw his own sinfulness.
जब यशाया ने, ने, ने परमेश्वर को यीशु मसीह में देखा यीशु को परमेश्वर में देखा तो उसको अपना जो क्या बोलते हैं अपना अपना जो sinfulness है जो पाप में स्वभाव है वो दिखाई दिया.
But he didn't only see his sinfulness, he saw everyone's sinfulness.
और उसने केवल अपना ही नहीं देखा अपना पाप में स्वभाव ही नहीं देखा बल्कि सबका देखा.
No one who sees the holiness of Christ can treat him like they treat other people.
और अगर कोई आदमी प्रभु यीशु मसीह का जो पवित्रता है उसको नहीं सही से नहीं समझता तो वो दूसरों के साथ भी अन्याय नहीं करेगा.
You see his worth, you see his holiness, and you also have to see your own unworthiness, your own unholiness.
आप उस परमेश्वर की योग्यता को, उसकी महानता को, उसके वैभव को देखते हैं और जब आप उधर देखते हैं तो आपको अपनी स्थिति भी समझ आती है कि मैं कहां हूं और कौन हूं.
And when you see that you are unworthy and that he is worthy, it will move you to worship him.
और जब आपको पता चलेगा कि हमारा परमेश्वर एक महान और योग्य परमेश्वर है और आपको पता चलेगा कि आपकी स्थिति दुर्बल है, कमजोर है उसके सामने, तो आपको इस सच्चाई को जानने के बाद में उस प्रभु की आराधना करनी चाहिए आपको.
In fact, if you don't worship him with all of your life, it's because you do not believe he is worthy.
और अगर आप अपने संपूर्ण शरीर के साथ में उसकी आराधना नहीं करते पूर्ण रूप से, तो इसका मतलब यह है कि आपने उसकी जो पूर्ण महानता है उसको अभी तक पूर्णता में समझा नहीं है.
We see this in the book of Revelation chapter 4.
और प्रकाशित वाक्य की चार अध्याय को हम देख सकते हैं, वहां पर यह सच्चाई दी गई है.
In verse 8, the angels are talking about his holiness.
4 के 8 में जो स्वर्गदूत हैं वो उसके पवित्रता के विषय में बात कर रहे हैं.
In verse 11, the elders are talking about his worthiness.
और पद 11 में 4 के प्रकाशित वाक्य के वहां पर जो है प्राचीन उसकी महानता के बारे में बात कर रहे हैं. आइए हम पद 11 को पढ़ दें.
The reason they worship him is in the first word of their song.
और अपने गीत में जो वो उसकी आराधना करते हैं पहले पहले बात में.
Is it first in Hindi? Worthy, worthy are you, O Lord. Worthy are you, O Lord. Our Lord, our God.
Yes.
The word worthy.
Yes. Samarth ke yogya hai.
Yeah. That's why they praise him. Because they see him as worthy of their worship.
Aur kyunki jo prachin hai usko dekhte hain, uski yogyata ko dekhte hain yahan par ki wo mahima, aadar aur samarth ke yogya hai, to isliye wo uski aradhana karte hain.
John the Baptist saw the worth of Christ.
Aur Yohanna baptisma dene wale ne bhi प्रभु यीशु मसीह के महात्म को, उसके उसका जो बड़ा चरित्र है उसको समझा.
He is so holy, he is so worthy that I should not be able to even be in his presence.
और वो इतने पवित्र हैं, वो इतने महान हैं कि मैं उनकी उपस्थिति में नहीं रह सकता.
How can sinful people come into the presence of the holy, worthy God?
और जो पापी लोग हैं वो किस प्रकार से एक पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं.
This is found in the third thing John the Baptist saw in Jesus.
और जो तीसरी बात है जो योहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह में देखी वो उसमें पाई जाती है.
John chapter 1.
तो फिर से योहन्ना 1 में आ जाएंगे.
Verse 29.
और 1:29.
If I could select 10 places in the Bible I would like to have been, this would be one of them.
और अगर मैं कुछ महत्वपूर्ण पद छांटना चाहूं बाइबल में से तो उनमें से एक पद ये भी होगा.
It would be difficult to only limit myself to 10.
और बड़ा कठिन होगा कि मैं 10 को बड़ी मुश्किल से छांटूं.
But this would certainly be one of the 10.
लेकिन उन 10 पदों में से 10 आयतों में से ये एक जरूर आएगा मेरी गिनती में.
As John the Baptist was out in the wilderness.
और जब जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल में था.
He was wearing an outfit of camel's hair and a leather belt.
और वो जो है ऊंट के चमड़े से वस्त्र बनाए हुए था और कटिबंध पहने.
He was eating locust and the wild honey.
और वो शहद और टिड्डियां खा रहा था.
And people were coming out to him from Judea and from the surrounding area.
और लोग उसके पास आ रहे थे यहूदिया से और सामरिया से.
He was a very bold prophet.
वो एक बहुत ही प्रखर काम व्यक्तित्व था.
He told the Pharisees, "You are a brood of vipers."
और उसने फरीसियों को बोला था कि तुम तो सांप की संतान हो.
He commanded them, "Bring fruit in keeping with repentance."
और उसने उनको आज्ञा दी कि तुम पश्चाताप के काबिल फल लेकर के आओ.
And then one day, as he was preaching,
और जब एक दिन वो प्रचार कर रहा था,
the Lord Jesus Christ came into the crowd.
तो प्रभु यीशु मसीह भी भीड़ में उन लोगों के साथ में उसके पास आए.
All the time before this, he had been preparing the way for the Messiah.
और बहुत वर्षों तक वो मसीहा के आने का मार्ग तैयार कर रहा था.
I can imagine him standing on the edge of the Jordan River.
और मैं कल्पना कर सकता हूं कि वो यर्दन नदी के किनारे पर खड़े होकर के तैयारी में लगे हुए थे.
And the large crowd is listening to him.
और एक बहुत बड़ी भीड़ उनको सुन रही थी.
And then he points into the crowd.
और फिर वो भीड़ की तरफ इशारा करते हैं.
And he has a hard time speaking because his jaw is trembling.
और जब उसने उधर की तरफ देखा तो उनको बोलने में बड़ी कठिनाई हुई क्योंकि उनका जो जबड़ा था वो ऐसा लग रहा था जैसे बोलने में बहुत कठिनाई महसूस कर रहा हो.
Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world.
और देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है वो उसकी तरफ इशारा कर रहा था.
John is identifying Jesus as the savior of all mankind.
और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह को एक ऐसे व्यक्तित्व की के रूप में दिखा रहा है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है.
In the middle of a bunch of religious people, a bunch of Jewish people, even Pharisees, he's saying those sacrifices cannot take away your sin.
और बहुत ही जो भीड़ बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के पास आई थी उसमें बहुत सारे लोग धार्मिक थे, फरीसी थे और धार्मिक मान्यताओं को व्यवस्थाओं को पूरा करने वाले थे, लेकिन यूहन्ना ने कहा कि तुम्हारे जो बलिदान है, तुम्हारी जो व्यवस्था है, वो पाप को पूर्ण रूप से नहीं उठा सकती है.
They thought if they went to the synagogue enough or brought the right sacrifices
enough.
और लोगों
ने सोचा कि हम लोग जो है आराधनालय में चले जाएंगे और बलिदान चढ़ा लेंगे वो शायद पर्याप्त होंगे.
Maybe if they offered the right prayers.
और शायद उन्होंने अगर एक बड़ी अच्छी प्रार्थना कर दी हो तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाएंगे.
Or maybe as they lived in society and kept the law.
और शायद वो समाज के अलग अलग कोनों में रहते हो और उन्होंने व्यवस्था को पूरा किया हो.
Maybe that would take away their sin.
और शायद ये मान्यताएं या इन चीजों के द्वारा उनके पाप हर लिए जाएं.
They would have been shocked when John said, "This man takes your sin away."
उन लोगों को बड़ा तगड़ा झटका लगा होगा जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि ये है जो जगत के पाप उठा ले जाएगा.
But instead of calling him a man, he called him the Lamb of God.
तो वो उसको बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना उसको एक व्यक्ति कहने के बजाय उसको कहता है कि ये परमेश्वर का मेमना है.
What a wonderful title for our Savior.
ओ कितना अद्भुत शीर्षक दिया गया प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का मेमना.
Do you remember when Israel was in Egypt?
आपको मालूम होगा कि जब इसराइल के लोग मिस्र में थे.
How many years?
कितने साल तक वो वहां पर रहे?
450.
450 साल.
Long years.
ये बहुत ही लंबा समय है.
They were slaves to the Egyptians.
और वो मिस्र के लोगों के दास थे.
The Egyptians commanded them to make bricks.
और जो मिस्री लोग थे वो उन्होंने उनसे ईंटें बनवाई.
And when they were angry with the Israelites, they would cause them to make more bricks.
और जब वो मिस्र के लोग उनसे गुस्सा होते थे तो वो उनसे और ज्यादा काम लेते थे.
And when they were especially angry, they would say, "Even more bricks, but we're giving you less straw."
और जब वो और भी ज्यादा गुस्सा होते थे इजरायलियों से तो मिस्री लोगों ने कहा कि और ज्यादा ईंटें बनाओ लेकिन तुम्हें कम मटेरियल मिलेगा बनाने के लिए.
And this happened for 450 years.
और ये 450 वर्षों तक चलता रहा ऐसा.
This was a long time of slavery.
तो ये बहुत ही लंबी गुलामी थी.
And when God raised up Moses to be the leader of his people.
और जब परमेश्वर ने मूसा को अपना उन लोगों का नेता होने के लिए चुना.
You remember that God hardened Pharaoh's heart.
आपको याद होगा कि परमेश्वर ने फिरौन के हृदय को कठोर कर दिया था.
Moses told Pharaoh.
मूसा ने फिरौन से कहा.
God said to let his people go.
परमेश्वर कहते हैं कि मेरे लोगों को जाने दो.
But do you remember why?
लेकिन किस लिए?
Let my people go so that they may worship me on the mountain.
और मेरे मूसा ने फिरौन से कहा कि परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरे लोगों को जाने दो ताकि वो पर्वत पर मेरी आराधना कर सके.
The purpose of their deliverance was for worship to God.
और जो मिस्र के लोगों का जो छुटकारे की जो योजना थी वो इसलिए थी, वो उसका मुख्य उद्देश्य ये था ताकि वो लोग छूट करके परमेश्वर की आराधना करेंगे.
But Pharaoh didn't think that was a good idea.
लेकिन फिर उनको वो विचार प्रिय नहीं लगा.
And you remember the episode of the 10 plagues.
और आपको मालूम होगा कि 10 महामारियां आई फिर.
Tell me some of those plagues.
क्या आप बता सकते हैं उनमें से कौन कौन सी महामारी आई थी?
Good. They told many of them. What was the final plague?
सबसे आखिरी वाला क्या था?
Yes. The 10th and final plague was the death of the firstborn. Now, do you remember God's instructions to Israel before that plague?
लेकिन क्या आपको याद है कि परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों से उस ये जो महामारी है उससे पहले कुछ शब्द कहे थे?
How did the death angel know to pass over the houses of the Israelites?
और किस तरीके से जो मृत्यु का जो स्वर्गदूत आया था उसको कैसे पता चला कि अंतर रखना है इज़राइल लोगों में और मिस्री लोगों में?
You can go read about this later. Let's just explain it now. It's Exodus 12 and 13 explains the Passover.
निर्गमन के 12 और 13 अध्याय में हम लोग ये चीजें पाते हैं.
But on every house of Israel, God commanded that on the doorpost, on the lintel, and to put the basin of blood at the bottom of the door.
तो इस तरीके से उनको बताया गया था इज़राइल के लोगों को कि अपने घर पर लहू लगाना है.
To take the blood of an unblemished lamb and put it over your doorway.
और निष्कपट मेमने का लहू लेकर के वो अपने दरवाजों पर लगाना था.
I don't want to make too much of this, but like the tabernacle, so also this is a picture of a cross.
और ये भी tabernacle या तंबू के जैसे इसमें भी हमें मसीह दिखाई देता है या क्रूस दिखाई देता है.
When the angel saw the blood, जब passed over the house.
स्वर्गदूतों ने वहां पर लहू देखा तो वो उस घर को छोड़ करके आगे बढ़ गए.
When he saw the blood of the lamb.
और जब उन्होंने वहां पर मेमने का लहू देखा.
Now turn with me to 2 Corinthians chapter 5.
और अब आप जो है दूसरा कुरिन्थियों और 5 अध्याय देखिए.
2 Corinthians 5.
दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5.
1 Corinthians, huh? Let's see. Yeah, 1 Corinthians.
Yeah. पहला कुरिन्थियों असल में.
Yeah. 1 Corinthians chapter 1 Corinthians 5:7.
5 का 7.
पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ ताकि तुम अखमीरी हो क्योंकि हमारा ही फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है.
This verse says very clearly.
और ये जो पद है ये बहुत ही साफ रूप से कहता है कि हमारा जो फसह है फसह का मेमना
that the Lord Jesus Christ is our Passover.
कि प्रभु यीशु मसीह हमारा फसह है.
Meaning, if you want to be spared from God's judgment.
इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप परमेश्वर के क्रोध से छुटकारा चाहते हैं.
If you do not want the consequences of your sins.
और अगर आप चाहते हैं कि आपके पापों का परिणाम आपको ना मिले.
If you want to be saved from God's wrath.
और आप प्रभु के प्रकोप से उसके क्रोध से बचना चाहते हैं.
Then the angel must see the blood on you.
तो जो मारने वाला स्वर्गदूत है परमेश्वर का उसको आपके ऊपर में वो लहू दिखाई देना चाहिए.
As John the Baptist calls him the Lamb of God.
और जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसको कहता है कि ये परमेश्वर का मेमना है.
His blood is our preservation from the judgment of God.
और उसका जो लहू है वो हमारा हमें सुरक्षित रखता है परमेश्वर के क्रोध से.
The reason we can praise the eternal God.
और अनंत काल के परमेश्वर की हम स्तुति इसलिए कर सकते हैं.
The reason we can come into the presence of the holy, worthy Lord.
और जो कारण है कि हम एक पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं.
It's because the blood of the Lamb covers the people of God.
उसका कारण ये है क्योंकि जो लोग हैं परमेश्वर के उनके ऊपर में उस मेमने का लहू लगा हुआ है.
Turn to Hebrews chapter 9.
और इब्रानियों के 9 अध्याय को देखिए.
Hebrews chapter 9.
इब्रानियों 9.
13:14. मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करके ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो.
आमेन. So verse 14 teaches that the blood of Christ is not only on the outside of us, it actually cleanses our conscience.
और पद 14 हमें ये बताता है कि हम केवल बाहर से ही साफ नहीं होते बल्कि हम भीतर से हमारा विवेक भी शुद्ध होता है.
And verse 14 also references the Trinity.
और 14 पद ही त्रिएक परमेश्वर को भी दर्शाते हैं.
Christ offered his blood by the Holy Spirit to God.
और परमेश्वर ने अपना निर्दोष बलिदान चढ़ाया पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर को.
And once you are cleansed by this blood, you are now free not to live for yourself, but to serve the living God.
और जब आप एक बार इस पवित्र लहू के माध्यम से छुटकारा पा जाते हो तो फिर उसके बाद में आप अपने लिए नहीं जीते बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए.
Lastly on this point, let's go to 2 Corinthians chapter 5.
दूसरा करंथियो 5 अध्याय में जाएंगे.
2 Corinthians 5 verses 14 and 15.
और पद 14-15.
क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए और वह सबके लिए मरा कि वे जो जीवित हैं आगे को अपने लिए ना जिएं परंतु उसके लिए जिएं जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा.
How do we know if the death of Christ has been applied to us?
और हमें कैसे पता चलेगा कि जो मसीह की मृत्यु है उसके हम भागीदार हो गए हैं.
This verse teaches that we will have life, spiritual life.
और ये पद हमें बताता है कि हम आत्मिक जीवन प्राप्त करेंगे.
If you meet God in the death and resurrection of Jesus, he gives you life.
और यदि आप यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान में पाते हैं तो परमेश्वर आपको जीवन देता है.
But like Israel, coming out of Egypt, the purpose was to worship God.
लेकिन जिस तरीके से जो इज़राइल के लोग हैं मिस्र में से निकल करके आए उनके आने का बाहर आने का उद्देश्य परमेश्वर की आराधना करना था.
He was giving them life so that they could worship him.
परमेश्वर ने उनको जीवन दिया ताकि वो उसकी आराधना कर सकें.
And in Hebrews, the blood of Christ cleanses our conscience so we can serve God.
तो इब्रानियों की पुस्तक में परमेश्वर का लहू हमें जो है हमारे विवेक को शुद्ध करता है ताकि हम उसकी आराधना कर सकें.
And here in 2 Corinthians,
और दूसरे कुरिन्थियों में यहाँ
पर, the gospel of Christ gives us life.
और यीशु मसीह का सुसमाचार हमें जीवन देता है.
So that we will no longer live for ourselves, but for Christ who died and rose again on our behalf.
ताकि हम आगे के लिए अपने आप के लिए न जिएं, परंतु यीशु मसीह के लिए जो हमारे लिए मरा और जीवित भी हो उठा.
Friends, if you're still living for yourself, you're simply not a Christian.
और अगर आप अभी भी अपने लिए जीते हैं तो आप सच्चे मसीह नहीं हैं.
Christians are people who have given their entire life away to the Lord Jesus.
और क्रिश्चियन जो है ऐसे लोग होते हैं या होने चाहिए जो जिन्होंने अपना सर्वस्व परमेश्वर के लिए निछावर कर दिया.
As Romans says, we give our whole life as a living sacrifice.
और जैसे कि रोमियों के पत्र में लिखा हुआ है कि हम उसको अपना जीवन पूरा बलिदान करके चढ़ाते हैं.
Or as Galatians says, we have been crucified with Christ. Now Christ lives within us.
और गलतियों की पत्र में लिखा हुआ कि हमने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया और अब मसीह हम में जीता है.
And the life we now live, we live by faith in the Son of God.
और अब हम जो जीवन जीते हैं वो विश्वास से जीते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह में.
Because he loved us and gave himself up for us.
क्योंकि उसने हमें प्रेम किया और हमारे लिए दे दिया.
So John the Baptist saw that Jesus is eternal.
तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने देखा कि यीशु मसीह अनंत काल का परमेश्वर है.
He saw that he is worthy,
कि वो योग्य परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है.
He saw that he's the Lamb of God who takes away our sin.
उसने देखा कि वो परमेश्वर का मेमना है जो हमारे पापों को उठा ले जाता है.
And finally, in John chapter 1,
और आखिरी बात जो है यूहन्ना एक अध्याय में,
John the Baptist saw that Jesus is the Son of God.
और उसने ये भी देखा कि जो यीशु मसीह है वो परमेश्वर का पुत्र है.
Look at verse 34.
और 34 पद देखिए आप, 1:34.
और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है.
Friends, the Christian faith rises and falls on this truth.
और प्रिय मित्रों, जो मसीह विश्वास है वो इस लाइन पर जो यहाँ पर लिखी गई है इस पर ठहरा हुआ है.
You see, John the Baptist first received the truth for himself, then told others.
और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जो सच्चाई परमेश्वर की अपने लिए ग्रहण की पहले और फिर दूसरों को बताई.
He says at the beginning of the verse, I myself have seen.
और इस पद के शुरुआत में वो कहता है कि मैंने खुद देखा है उसे.
Then I testify to you.
और अब मैं देखने के बाद, चखने के बाद, अब तुम्हें बताता हूँ उसके बारे में.
I don't believe anyone's going to heaven because they're a preacher of the gospel.
और मैं नहीं सोचता कि कोई भी आदमी इसलिए स्वर्ग जाएगा क्योंकि उसने सुसमाचार प्रचार किया है.
In fact, Jesus said, many will prophesy in his name.
दरअसल प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बहुत सारे लोग होंगे जो उसके नाम में प्रचार करते होंगे.
And to many of those preachers, Jesus will say, I never knew you.
और प्रभु यीशु मसीह उन बहुत सारे प्रचारकों को ये कहेगा कि मैं तुम्हें कभी नहीं जाना.
But John the Baptist was a Christian before he was a preacher.
और लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो पहले मसीह था इससे पहले कि वो प्रचारक था.
He believed the message that he proclaimed.
और जो संदेश उसने प्रचार किया उसको वो स्वयं विश्वास करता था.
When he pointed at Jesus beside the Jordan River.
और जब उसने लोगों को बताया कि ये यीशु मसीह है यर्दन नदी के किनारे पर.
He said he can take away our sins.
और उसने कहा कि वो हमारे पापों को उठा सकता है.
Because he's the Son of God.
क्योंकि वह परमेश्वर का पुत्र है.
Turn with me to the Gospel of Mark chapter 15.
और मरकुस के 15 अध्याय को देखेंगे.
This is the account of the crucifixion of Jesus.
और यीशु मसीह का क्रूस के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है.
Mark 15.
मरकुस का 15 अध्याय.
I want you to picture this scene.
और मैं चाहता हूं कि आप इस सीन को, दृश्य को अपने दिमाग में सोचें.
There are many people in the crowd.
भीड़ में बहुत सारे लोग हैं.
They were all in front of Pilate just moments before.
और कुछ समय पहले वो पिलातुस के सामने थे.
They were shouting, "Crucify him! Crucify him!"
और उसको क्रूस पर चढ़ा दो, उसको क्रूस पर चढ़ा दो.
As they led him away to Calvary.
और जब वो उसको कलवरी की तरफ लेकर गए.
Jesus was carrying his own beam, his own cross beam.
तो यीशु मसीह अपने क्रूस को लेकर चल रहे थे.
The crowd was shouting at him and cursing at him.
और जो भीड़ थी वो उस पर चिल्ला रही थी और उसको शापित कह रही थी.
They had already beaten him with the whip.
और लोगों ने उसको पीटा था बेंत से.
They had already punched him in the face.
और लोगों ने उसको घूसा मारा था चेहरे पर.
They pulled his beard from his face.
और लोगों ने उसकी दाढ़ी को नोच लिया था.
He was so weary that he fell down.
और वो बहुत ही थके हुए थे, इतने थक गए थे कि वो नीचे गिर गए.
He could not carry the cross any further.
और वो आगे अपने क्रूस को उठाकर नहीं ले जा सकते थे, इतनी हिम्मत नहीं थी.
They forced another man to carry his cross.
तो लोगों ने एक दूसरे आदमी को विवश किया कि वो उसको लेकर चले.
They brought him to the top of the mountain.
और फिर वो उसे पर्वत पर ले गए.
They put the spikes in his wrist and his feet.
और फिर उन्होंने वो कीले उसके हाथ और पैरों में ठोक दी.
They put the cross and dropped it into the hole so it would stand.
और क्रूस उन्होंने लगा दिया और वो कीले लगा दी ताकि वो खड़े हो सके.
I want you to imagine all the people watching him.
और मैं चाहता हूँ कि आप कल्पना करें कि इतने लोग उसको देख रहे थे.
The Bible says they were abusing him. They were speaking blasphemous things against him.
और बाइबल बताती है कि लोग उसकी निंदा कर रहे थे और उसको गलत बता रहे थे.
But I don't only want you to notice the crowd around him.
और मैं वो भीड़ के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा.
I want you to notice the Roman soldier standing beside the cross.
और मैं चाहता हूं कि आप जाने कि जो रोम के जो सिपाही थे वो क्रूस के बराबर में खड़े हुए थे.
He has a spear in his hand.
और उसके हाथ में भाला था.
And he's standing as the guard.
और वो सुरक्षा कर्मी के रूप में वहां पर खड़ा हुआ था.
Now look at chapter 15, verse 39.
और इसी में 15 का और 39 पद देखिए आप. 15:39.
जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा, तो उसने कहा, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था.
I believe the Roman soldier was saved in that moment.
और मैं विश्वास करता हूं कि जब रोमी सिपाही ने यह बात कही तो शायद वो बच गया था, उद्धार हो गया था उसका.
Because even though most of the people were still hating Jesus.
क्योंकि उस समय में बहुत सारे लोग उसको घृणा कर रहे थे.
He saw the way Jesus gave himself up to God.
लेकिन उस सिपाही ने यह देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर के प्रति कैसे निछावर कर दिया.
He heard Jesus say, "It is finished."
और उसने सुना प्रभु यीशु मसीह को कहते हुए कि सब कुछ पूरा हुआ.
He saw Jesus yield his spirit up to God.
और उसने देखा कि प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा पिता के हाथ में सौंप रहे हैं.
He watched him die.
और उसने देखा कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार की मृत्यु मर रहे हैं.
And he said, "Certainly, this is the Son of God."
और उसने कहा, निसंदेह या निश्चय ही ये परमेश्वर का पुत्र था.
He had seen many other people die by crucifixion.
उसने उस सिपाही ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा क्रूस की मृत्यु सहते हुए.
He saw two other men that very same day.
और उस दिन में भी दो लोग उसने देखा होगा वहीं पर.
But he never said that they were the Son of God.
लेकिन उसने उनके बारे में ये नहीं कहा कि वे परमेश्वर के पुत्र थे.
When this man saw that Jesus is the Lamb of God, who takes away our sin.
जब उस आदमी ने देखा कि वो परमेश्वर का मेमना है जो हमारे पापों को उठा ले जाता है.
When he saw that Jesus is the Son of God, who makes a sufficient sacrifice for our sin.
और जब उसने देखा कि वो हमारे लिए पर्याप्त बलिदान पूरा करता है.
Then he knew that his own sin could also be taken away.
तो उसको अंदाज हो गया या पता चल गया कि वो उसके पाप भी परमेश्वर उठा सकने में सामर्थी है.
Friends, do you see Jesus Christ as everlasting?
क्या प्रिय मित्रों, क्या आपको यीशु मसीह अनंत काल का परमेश्वर दिखाई देता है?
Do you see him as holy and worthy?
क्या आप उसे पवित्र देखते हैं? क्या आप उसको
Do you see him as the Lamb of God?
क्या आप उसको योग्य और परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर का मेमना करके देखते हैं?
Do you see him as the Son of God?
क्या आप उसे परमेश्वर का पुत्र हो करके देखते हैं?
Now risen from the dead.
जो वो अब मृतकों में से जीवित हो उठा है.
Seated at the right hand of the Father.
और वो परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है.
Before whom you will stand and give an account.
जिसके सामने आप सबको खड़ा होना होगा और अपना लेखा देना होगा.
Like the trains that are now passing through India.
और एक ट्रेन.
The train.
और जैसे ये जो रेलगाड़ी होती है और वो भारत में से होके गुजर रही हो.
They will reach their destination.
और वो अपनी मंजिल में पहुंचेंगे.
Just like your life, it is a train moving to a destination.
तो आपका जीवन भी एक रेलगाड़ी की जैसे है और वो एक दिन एक मंजिल पर पहुंचेगा.
Just like the Roman centurion saw the Son of God.
और जिस प्रकार से रोमी सूबेदार ने परमेश्वर के पुत्र को देखा.
God is bringing your life to the point where you too will stand before Him.
तो परमेश्वर आपके भी जीवन को एक ऐसे मुकाम पर लेकर के आ रहा है कि आप भी उस परमेश्वर के पुत्र को देख सकें.
And I pray that you will have a fair meeting with Christ.
और मेरी प्रार्थना है कि आप उस परमेश्वर से मसीह से अच्छे तरीके से मिल सकें, आपका संबंध अच्छा बन जाए उसके साथ.
And that will be a fair meeting only if he has taken away your sin.
और वो मिलन तब संभव होगा जब आपके पाप उठा लिए जाएंगे.
Let us worship him. Let us praise him.
उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें.
Let us join John the Baptist in giving him glory.
और आइए हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ में जुड़ जाएं, उसके साथ खड़े हो जाएं परमेश्वर को महिमा देने के लिए.
And like John the Baptist, even if it costs us our life, let us faithfully serve him.
और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जैसे ही अगर हमारा जीवन भी खतरे में पड़ता है तो भी हम उसके लिए खड़े रहें.
Jesus is worthy.
यीशु मसीह सारी बातों के लिए योग्य परमेश्वर है.
आमेन.
आमेन. आमेन.